हमने सूरत अल-अनाम पढ़ी, लाइट लगी होगी आपको, बहुत ज्यादा इकामात नहीं थे, मक्का के लोगों की बात है तो आप सूरत अल-आराफ है, दोनों का रख लीजिए। सूरत अल-अनाम में तौहीद की बहुत बात हुई। सूरत अल-आराफ का मौजू रिसालत है, एक बात। अगली बात यह है कि सूरत अल-आराफ के नाते से चंद चीजों को समझिए। इंसान की फितरत में चंद चीजें गुंदी हुई हैं। नंबर एक, तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दूसरी बात, हया। आदम और हव्वा के लिबास जब उतर गए जन्नत में तो किसी ने उनको कुछ सिखाया नहीं, बताया नहीं, पढ़ाया नहीं, लेकिन फौरन जाके जन्नत के पत्तों से अपने आप को छुपाने लगे। आज भी न्यूबॉर्न बेबी को माँ जरा सा जब चेंज करती है तो वो अपनी टांग को सकेटता है। तीसरी बात, इंसान इस दुनिया में क्यों भेजा गया, एक मकसद हयात हो। और इसी तरह से तौबा, गुनाह इंसान से हो जाता है लेकिन फितरत का तकाजा है कि फौरन पलट आओ, जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का जिक्र आ रहा है। और एक आखिरी चीज ये है कि हर बंदा आखिरत में कामयाब होना चाहता है, इसीलिए सूरत में आराफ के मुकाम पर कुछ लोगों को रोक दिया जाएगा जिनकी नेकियां बदियां या बराबर होंगी, या कोई एक गुनाह रुकावट बना हुआ है बाकी सारी नेकियों की कबूलियत में। या ऐसे है कि आप एयरपोर्ट पर गए, सबके साथ सब कुछ ठीक था लेकिन आपके किसी वीजे में कोई प्रॉब्लम था, सब कुछ ठीक था, आप में मसला था, आपको नहीं जाने दे रहे, बाकी को जाने दे रहे हैं, यानी नेकियों का कोई ऐसा वर्जन आपने इख्तियार किया हुआ था जो इस्लाम से वेरीफाइड नहीं था, सर्टिफाइड नहीं था। तो ये सारी चीजें जहन में रख के सूरत अल-अराफ को पढ़ते हैं। 87 आयात है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम स्वाद, हरूफ मुकत्तात हैं। किताब अनुन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सद्रिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही वज़िक्रा लिल्मुमिनीन। ये किताब है जो आपके पास इसलिए भेजी गई कि आप इसके जरिए से डराएं, सो आपके दिल में इससे बिल्कुल तंगी ना हो, और नसीहत ईमान वालों के लिए आप लोग उसकी पैरवी करें जो आपके रब की तरफ से आई है। इसको हाईलाइट कीजिए, इत्तबी उमा उन्ज़िला इलैकुम। हम क्या करते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं कुरान को, बेटी की शादी में दुल्हन के सर पे रखते हैं। कुरान कह रहे हैं इत्तबी उमा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबी मिन दूनिही औलिया, और अल्लाह को छोड़कर मनगढ़ंत सरपरस्तों की पैरवी मत करो। लेकिन आमतौर पे लोगों का कलीलम मा तज़क्करून, तुम थोड़े हो या थोड़ी है वो नसीहत जो तुम पकड़ते हो। दोनों बातों को इधर आप फिट कर सकते हैं। क्या पता चला कि सूरत के आगाज में बता दिया कि ये किताब चूमने चाटने के लिए नहीं है, जिन्नों भूतों को भगाने के लिए नहीं है, बल्कि ये किताब अमल के लिए आई है। अब पिछली कौमों की तबाहियों की कुछ बातें। वकम मिन करियत नहलकनाहा, और बहुत सी बस्तियों को हमने तबाह कर दिया और इन पर हमारा अजाब रात के वक्त आ पहुंचा, या ऐसी हालत में कि वो दोपहर के वक्त आराम में थे। क्यों, ये गफलत के वक्त होते हैं, सारी रात का नशा ही भी इस वक्त हो चुका होता है, बुरे काम करने वाले भी ऐसे वक्त में घरों में आ चुके होते हैं। अल्लाह गफलत के हालत में पकड़ता है, क्यों पकड़ता है, ताकि बंदे को पता चले कि उसके ऊपर कोई मौजूद है। और जरा नोट कीजिए कि जब उनके साथ ये वक्त होता है तो क्या होता है, इस आयत को हाईलाइट कीजिएगा। फमा काना दावाहुम इस जाहुम बासुना इल्ला अन कालू इन्ना कुन्ना जालिमीन। अब इसको याम भी देखिए और आगे आदम अलैहिस्सलाम की दुआ में भी देखिएगा। बस जिस वक्त इन पर हमारा अजाब आया, इस वक्त इनके मुंह से सिवाय इसके और कोई बात ना निकली कि वाकई हम जालिम थे। जब अजाब आता है ना तो आंखों पे पड़े हुए पर्दे हट जाते हैं, फिर बंदे को अपने गुनाह नजर आते हैं, अपनी चीजें याद आ रही होती हैं। फिर हम इन लोगों से जरूर पूछेंगे जिनके पास पैगंबर भेजे गए थे, और हम पैगंबरों से जरूर पूछेंगे। फिर हम चूंकि पूरी खबर रख इनके रूबरू बयान कर दें, और हम कुछ बेखबर ना थे, यानी वहां हिसाब नबियों का भी है और कौमों का भी। वल वज़्नु यौमइज़िल हक़, और उस रोज वजन भी बरहक होगा। फिर जिस शख्स का पल्ला भारी होगा, बस ऐसे लोग कामयाब होंगे, और जिस शख्स का पल्ला हल्का होगा, बस ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया, बस सबब इसके कि हमारी आयतों के साथ जुल्म करते थे। हिसाब किताब अपनी जगह, आमाल नामे का तुलना अपनी जगह, ये आयत यहाँ भी है, और तीसवें पारे तक तो बहुत दफा आ जाएगी कि अमालनामे तुलेंगे। आप और मैं जिंदगी में लोगों को देखते हैं, कुछ बहुत नेकियां करते हैं, कुछ कम करते हैं। हमारे जहन में क्या आता है कि जो बहुत नेकियां कर रहे हैं उनके अमालनामे बस नहीं होंगे, और जो कम कर रहे हैं उनके कम होंगे। कुछ नेकियां कर रहे होते हैं, कुछ बदियां कर रहे होते हैं। आम बहस तो यही है ना, कुछ खैर की दावत दे रहे होते हैं, कुछ खैर से रोक रहे होते हैं। तो हमारा मुशाहिदा क्या है कि खैर वालों के वजन ज्यादा होंगे और शर वालों के कम होंगे, लेकिन आम तौर पे तो ये बात ठीक है, लेकिन बिलखसूस ये बात ठीक नहीं है। क्यामत के दिन ना सिर्फ ये कि अमाल नामों में हमारी नेकियां देखी जाएंगी, बल्कि नंबर एक हमारी शाकिला, हमारा पर्सनैलिटी मॉल क्या था, यानी हमारा हम किस पर्सनैलिटी से बिलोंग करते थे। और आप पता है कि 70 के करीब मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटीज हैं। अलहमदिल्ला हमने करेक्टर बिल्डिंग में कई किस्में पढ़ी हैं। आपको अपनी पर्सनैलिटी को खुद पढ़ना चाहिए ताकि आप अपने से फायदा लें, अपने बच्चों की पर्सनैलिटी पढ़ें ताकि पेरेंट किड का बीच की जो वो जो टेंगल्स रॉड्स हैं वो खत्म हो, और इसी तरह शौहर बीवी के कितने मसले खत्म हो जाएं अगर दोनों एक दूसरे की पर्सनैलिटी को पढ़ लें। कुछ लोगों की फितरतन नेकी आसान होती है, सलीम तबा होते हैं, जैसे अल्लाह के नबी थे। कुछ की तबीयत में कुछ शर ज्यादा होता है, दोनों एक ही नेकी कर रहे हैं अगर दूसरे का ज्यादा होगा। कुछ को हालात टेलर मेड मिलते हैं, घर वाले भी मुवाफिक, सब कुछ अच्छा। कुछ को कॉन्फ्लिक्ट में से निकलना पड़ता है, कुछ के शौहर उनको छोड़ के आते हैं, कुछ के शौहर उनको रोकते हैं नेकियों के लिए। फर्क हो फिर इखलास, क्या छोड़ा उसके लिए। मिसाल देती हूँ, 5 तोले का सेट है, पैसों की जरूरत पड़ी, आप कहते हैं जाके बेचते हैं, 5 तोले के पैसे ले आते हैं। जब गए तो सुनार के आपको 5 तोले के पैसे देता है, डोरियां काटेगा, नीचे लटकते हुए मोती काटेगा, अंदर के मोती नगों को निकाल कर पीछे 5 में से 3 तोले बच गया, 3 में से भी वो काट काटेगा, फिर उसमें से नए पुराने सोने का करके। बड़ा ही कुछ समझदार या बड़ा ईमानदार होगा मजोम तो वो 2.5 तोले के पैसे आपको देगा। मैं और आप बहुत डरे इस वक्त, हम कुरान पढ़ और पढ़ा रहे हैं, और ये खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहू। कुछ लोग इस सारे प्रोग्राम की टेक केयर करते हैं, वो इस पे खर्च करने वाले हैं, वो इसके ऊपर टेक केयर करते, जगह बनाते, सही रखते ये जगह। ये तीन किस्म के लोग बेहतरीन काम करने वाले हैं, लेकिन कल क्यामत के दिन पता चला, मैं अपने ऊपर लेती हूँ कि मैंने 30 पारे तो पूरे पढ़ाई कोई नहीं, मैंने तो कोई वो कट कटा करके कोई 20 पारे पढ़ाए, क्योंकि 10 पारों में मेरी नीयत खराब थी, मैं ये थी, मैं वो थी, अल्लाह ना करे तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे ना। कई दफा बंदा हिसाब मांग रहा होता है, मेरा हिसाब करो मेरा हिसाब करो, दिल में होता है देखना 5 लाख आएगा। वो जब हिसाब जमा किया ना, तो वो क्रॉस चेकिंग जब हुई, तो आपने तो 6 लाख पहले से खर्च कर लिया हुआ, 1 लाख दीजिए। क्यामत के दिन ये सब होगा। कोई अपनी नेकी पे फख्र ना करे, किसी गुनाहगार को हकीर ना जाने। कई दफा किसी का सिर्फ एक गुनाह छोड़ना आपकी 10 नेकियों के करने से भारी होगा। अल्लाह ताला हमारे दिलों में मोहब्बत डाल दे उन लोगों की जो अभी तक हमारी कमजोरियों की वजह से खैर तक नहीं पहुंचे। फिर आगे देखिए अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमा रहे हैं, वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु फ़ौलाइकल्लज़ीना ख़सिरू अन्फुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। इस हिस्से को भी आपने गौर से पढ़ना है और जानना है, और दुआ कीजिए कि अल्लाह आपको किसी बिगड़े हुए इंसान की हिदायत का जरिया बना दे। वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्द, और बेशक हमने तुमको जमीन पर रहने की जगह दी, और हमने तुम्हारे लिए इसमें सामान्य रिस्क पैदा किया, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो। इस पे गौर कीजिए, क्या मैं शुक्र गुजार हूँ नेमतों पे? सर सजदे से नहीं उठता, बिलीव मी, मैं आपको अपनी कल रात की फीलिंग बता रही हूँ। दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अपना सर सजदे से उठाऊँ, कि अल्लाह तू मुझे किस पाक जगह पे ले आया। तेरी नेमतों में से ये नेमत अब बंदे का इख्तियार नहीं है। कोई नेकी की तौफीक भी मिल जाए ना, तो और रोया करें कि अल्लाह बस अब इसको कायम ही रखना। गलती से तो कोई भी नेकी कर लेता है, अल्लाह हमें सही मानों में नेक रखना, और अल्लाह ताला आपसे मुझसे बेहतरीन काम ले ले। आगे से अब यहाँ जो मैंने पारे के थीम में आपको कुछ चीज़ें लिखाई हैं ना, आदम के किस्से से शुरू होकर अगले अम्बिया के किस्सों में भी यही चीज़ें दिखेंगी। वलकत खलक ना कुम सुम मसवर ना कुम, और हमने तुमको पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, बस सबने सजदा किया सिवाय इबलीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अब आयत नंबर 12 से लेके ऑनवर्ड जरा शैतानी हथकंडे, डेवल्स डिसेप्शंस या डेवल्स प्लॉटिंग नोट कीजिएगा। क्योंकि पारे के शुरू में ही आपको बता दिया था हक और बातिल की जंग है, और यही है शैतान जो लोगों को शर से रोकने के लिए अच्छे अच्छे लोगों के दिलों में गलत बातें डाल देता है। उसका अपना हाल क्या था, काला मामा ना कल्ला तस्जुदा इस अमर तुक, हक ताला ने फरमाया तू जो सजदा नहीं करता तो तुझको इससे कौन सी चीज ने रोका, जबकि मैं तुमको हुक्म दे चुका हूँ। कहने लगा मैं इससे बेहतर हूँ, ये पहला जुमला है, अना खैरु मिन्हु, याद रखिए ये तकब्बुर है, मैं बेहतर हूँ। जिस दिन आपको अपनी बड़ाई का जोम खत्म हो गया, आपको दूसरे लोग अपने से अच्छे लगेंगे। आपने मुझको आग से पैदा किया और इसको आपने खाक से पैदा किया, ये दूसरी चीज है, लॉजिक्स देना, जस्टिफिकेशन ऑफ देयर सिंस। हक ताला ने फरमाया कि तू आसमान से उतर, तुझको कोई हक हासिल नहीं कि तू आसमान में रहकर तकबर करे, बस निकल, बेशक तू जलीलों में से है। ये तीसरी चीज नोट कर लीजिए, उसने कहा मुझको मोहलत दीजिए क्यामत के दिन तक, किस चीज की, गुनाहों की। अल्लाह ताला ने फरमाया तुझको मोहलत दी जाती है, काला इन्ना का मिनल मुंजरीन, शाही फरमान है, अल्लाह कौन सा डरता है शैतान से, कहा जा तुझे मोहलत दी। काला फ बीमा मुस्तकीम, ये फोर्थ रवैया शैतान का, इसने कहा बस अब इसके आपने मुझको गुमराह किया, यानी आदम के, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इनके लिए आपकी सीधी राह पर बैठूंगा, बुरे प्लान्स इरादे, यानी मैं इसको हर हर रास्ते से पकड़ूंगा। कैसे, फिर इन पर हमला करूंगा, इनके आगे से भी और इनके पीछे से भी, इनकी दाई जानिब से भी और इनकी बाई जानिब से भी, और आप इनमें से अक्सर को शुक्र गुजार ना पाएंगे। वो सारे शैतान पे आपके ऊपर हमले ऐसे करे, जैसे कुत्ता नहीं जहन में आता, पंजे पकड़ कर इधर से भी आऊंगा इधर से भी आऊंगा, और आपके और आपकी नस्लों के लिए ऐसी बातें कर रहे, और साथ ही कह रहा है कि वैसे ये शुक्र करेंगे कोई नहीं। काला खुरुज मिन्हा, अब अल्लाह ताला का जवाब सुनिए, अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ से जलीलो ख्वार होकर निकल जा, जो शख्स इनमें से तेरा कहना मानेगा मैं जरूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। आपके मेरे अबदी दुश्मन का तस्करा शुरू में कर दिया, ये है जी मार्का है हक को बातिल में, इबलीस और आदम का किरदार। इबलीस से गलती हुई, अकड़ा, खुद को बड़ा किया, अल्लाह को कसूरवार ठहरा रहे, नऊज़ु बिल्लाह, तौबा नहीं कर रहा। अब आदम का इम्तिहान क्या, वया आदम उस्कुन तवज़ौजुकल जन्ना, और हमने हुक्म दिया कि आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो दोनों खाओ और इस दरख्त के पास मत जाओ वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे, और कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से और किसी सबब से मना नहीं फरमाया मगर महज इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से हो जाओ, और इन दोनों के रूबरू कसम खा ली। वकासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन्नासिहीन, इसको भी नोट कीजिए, इरादे देखिए क्या हैं इंसान के खिलाफ और सच्चा क्या बन रहा है, मैं तुम दोनों का बड़ा खैर ख्वाह, अपना बनकर आता है धोखे देता है। फदल्लाहुमा बिगुरूर, ये इसका प्रैक्टिकल टैक्ट, उसका तरीका है, वारदात जाहिर हो रहा है, क्या किया, सो इन दोनों को फरेब से नीचे ले आया, बस इन दोनों ने जब दरख्त को चखा दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गईं, और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे, और इनके रब ने इनको पुकारा क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना ना कर चुका था, और क्या ये ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन शैतान लकुमा अदु मुबीन, सवाल लिखिए क्या शैतान सिर्फ आदम और हवा का दुश्मन था, नहीं, यही किस्सा 7.5 बारों के बाद 15वें पारे में इसी के आगे कंटिन्यू होगा, वहां जाकर आप पढ़ेंगे, ये कहेगा कि आदम की जुर्रियत को बहकाऊंगा, यानी हर थोड़े थोड़े अरसे के बाद अल्लाह रिवाइज कराते हैं चीजों को, तो तदब्बुर और अमल की बात है। पहली तो बात है कि शैतान चूंकि दुश्मन है पीछे लगा हुआ है, तो जब दुश्मन पीछे लगा हो तो क्या करना चाहिए, हिफाजत की दुआएं मांगनी चाहिए, तो दुआ कीजिए अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैन यदैय्या व मिन खल्फी व यमीनी व शिमाली व मिन फौकी, और ये एक दुआ का छोटा हिस्सा है मसनून दुआ में, तवील दुआ है जिसमें आपको हर तरफ से हिफाजत मांगता हुआ सिखाया गया, शैतान से पनाह मांगिए और दूसरों के साथ आजजी और इंकसारी का रवैया अपनाइए। मैं एक छोटी सी एक्टिविटी दूँ, किसी भी बंदे को जिसको आप बहुत गलत सोचती हैं, गुनाहगार, गलत, बेरा, हिदायत से भटका। सोच लिया। अब आप जरा सोच के बारे में नरम गोशा लाइए और उसके साथ आजजी और इनकसारी का रवैया अख्तियार करें और कहें, 1% ही सही, 100 नहीं, आउट ऑफ 100 99% आपकी बात बिल्कुल ठीक है उसके बारे में, लेकिन देयर इज रूम फॉर 1%, शायद वो ठीक और मैं उसको गलत समझ रही हूँ। ये आजजी बाकी है। इमाम इब्ने कय्यम कहा करते थे कि अपने भाई के लिए 100 उजर रखो जब तुम उसकी को खराबी देखो, और 100 बातें सोचो, ये वजह हुई होगी, ये होगी, ये, और आखिर में फिर 100वीं बात कह दो 99 के बाद कि मुझे लगता है मुझे वो वजह नहीं समझ आ रही, वो कोई और ही वजह होगी। मोमिन इतना ज्यादा दूसरे के लिए अच्छा गुमान रखने वाला होता है। फिर खताओं का इतराफ और तौबा करनी है, अपनी खूबियों को अल्लाह की तरफ मंसूब करना, अपने ही गुनने गाने, कुरान पाक से रहनुमाई, कुरान जाहिर और बातिन की इसलाह का जरिया है, इताअत अल्लाह की और रसूल की इताअत बंदे को अंदर बाहर से निखार देती है, वसवसे डालना और बुराइयों को अच्छा बनाकर पेश करना इब्लीस के हथियार है। देखिए, पारे के शुरू से लेके अब तक आपको एक लड़ी में पिरोया हुआ पारा लग रहा है, वह जुखरुफ अल कौल था, वलवन्ना से लेके अब यहाँ क्या एंड तक देखेंगे, यही इस पूरे पारे का थीम है। मार गए हक को बातिल और शैतान की चालें, और अक्लमंद वो है जो शैतान के हाथों में तरने वाला ना बने बल्कि क्या कहे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर इसे एक और रहनुमाई मिली कि हर कसम खाने वाला सच्चा नहीं होता, क्योंकि इबलीस कसम खा रहा है और है झूठा। गौर और फिक्र की चंद बातें, अपनी अक्ल और फहम के गरूर में शरीयत पर एतराज़ नहीं करना, जैसे इबलीस ने कमतर जानकर इंसान को सजदा ना करके अल्लाह की नाफरमानी की, कुरान और हदीस के सामने किसी का कौल काबिले कबूल नहीं, अक्ल पर भरोसा नहीं रखना, अल्लाह की शरीयत को मानना, जालिम पर अजाब इलाही से इबरत का सबक, रात और दिन अजाब नाजिल होने के दो औकात हैं, जब बंदा गाफिल होता है तब पकड़ आती है, तो हमेशा अपनी इसलाह की कोशिश करनी है। इब्लीस ने मिन फौक ही हिम का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, ये गौर का नुक्ता देख लीजिए, दाएं बाएं इधर उधर कह दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि ऊपर अल्लाह की ज़ात है। सब कुछ अच्छा था लेकिन फिर भी बहक गया, अकीदा तक उसका ठीक है, आपको पता है रब भी रब को रब कह रहा है, बीच में किसी और को नहीं ला रहा, यौमी यू बसून से आखरत को मान रहा है, तो क्या पता चला कि आप अच्छे अकीदे के जोम में रहते हुए कोई गलत काम ना कर जाए, क्योंकि अल्लाह उस पर भी पकड़ता है। अब आगे वो दुआ है जो फितरत में आपको जो चार पांच चीजें शुरू में लिखाई है ना, फितरत की एक पुकार है कि अगर गुनाह हो जाए तो फौरन जाके शावर ले लो तौबा का, गुस्ले तौबा। कैसे, काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, आयत नंबर 37। दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर तुम्हारी मगफरत ना करेगा और हम पर रहम ना करेगा तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। या एक चीज़ आपने नोट की, पहली दुआ जो इंसानियत को सिखाई जा रही है वो तौबा की है, और तौबा कौन करेगा जिससे गुनाह होंगे, तो गुनाहों से मुबर्रा कोई नहीं है, बस हर गुनाह के पीछे तौबा लगा दे। दुआ का जवाब क्या आया, काल भी तू बा दुकुमली बा दिन अतूफ, हक ताला ने फरमाया कि नीचे ऐसी हालत में जाओ कि तुम बाहम एक दूसरे के तुम दुश्मन हो गए, और तुम्हारे पास से जमीन में रहने की जगह है और नफा हासिल करना है एक वक्त तक, फरमाया तुमको वहां की जिंदगी बसर करना है और वहां ही मरना है, इसी में से फिर निकाल ले जाओगे। यानी अल्लाह ताला का क्रिएशन प्लान ही ये था कि आदम को जन्नत दिखा दी जाए लेकिन फिर जमीन पे बसाया जाए। बाद लोग कहते हैं आदम ने क्यों फल चखा फिर हम भी जन्नत में रहते, तो नहीं, वो इस काल रब्बु कलिल मलाइका तिन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, आदम पैदा ही दुनिया के लिए किया गया था, जन्नत तो इसलिए दिखा दी जैसे वो उनके इंस्टिंक्ट में रहे, जैसे कोई घर बनवाना हो तो वो पहले एक मॉडल दिखाते हैं फिर असल घर मिलता है ना, तो ये दुनिया एक मॉडल है, एक डमी चीज है, असल जन्नत वहां मिलेगी। अब यहाँ तक किस्सा है आदम का वो रूप पूरा हुआ जिसमें हक और बातिल का मरका था, अब आगे से शैतान का पहला हदफ क्या है, बेलिबास करना। आदम और हव्वा ने जो ही उस ममनुआ दरख्त का फल चखा तो उनके कपड़े उतर गए, लिखिए रिस्के हराम का पहला असर हमारे लिबास पे होता है। हुस्न आता है तो लिबास कम हो जाता है, पैसा आता है तो टखने नंगे हो जाते हैं, सी थ्रू लॉन के कपड़े पहन लेती हैं खवातीन, क्या सोच के कि गर्मी बड़ी लगती है। अभी सारी तमहीद के साथ सुनिए। या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है और जीनत का बाइस भी है और तकवा का लिबास, ये इससे बढ़कर है। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है ताकि याद रखें, ए औलादे आदम, शैतान तुमको किसी खराबी में ना डाल दे, जैसा कि इसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से बाहर करा दिया। जरा कान लगाइए इस बात पे, माँ बाप का दुश्मन औलाद का कभी दोस्त नहीं हो सकता। वी शुड बी केयरफुल, एहतियात बरती है। क्या किया था उसने? ऐसी हालत में इनका लिबास भी उतरवा दिया ताकि वो इनको इनकी शर्मगाहें दिखाए। इबलीस का पहला गोल क्या था? कपड़े उतरे। जो ही कपड़ा उतरता है शैतान का सारा काम आसान हो जाता है। आज के दौर का फितना, आज के दौर का प्लेग बेहयाई। अगर आज के दौर में कोई नबी आता, जो नहीं आएगा, तो जिस मौजू को वो हाईलाइट करता वो बेहयाई थी, न्यूडिटी, न्यूड फिल्में, प्रॉन मूवीज और पता नहीं क्या गदबला। अल्लाह ताला कहते हैं इसका तरीका क्या है, ये तुम्हें कैसे फांसता है? जैसे शिकारी छुप के शिकार पे हमला करता है। इन्नहु यराकुम हुवा वक़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, इसको ज़रा फील कीजिएगा, वो और इसका लश्कर तुमको ऐसे तौर पर देखता है कि तुम इनको नहीं देखते हो। हमने शैतानों को इन्हीं लोगों का दोस्त बनाया जो ईमान नहीं लाते। अब शैतान चुपके से देख रहा होता है और आपसे गलत काम करा रहा होता है, कैसे? व इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना, और वो लोग जब कोई फुहश काम करते हैं तो कहते हैं हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है और अल्लाह ने भी हमको यही बतलाया है, यानी झूठ बोलते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला फुहश बात की तालीम नहीं देता, क्या अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसकी तुम सनद नहीं रखते? आप कह दीजिए कि मेरे रब ने हुक्म दिया है इंसाफ का, अदल इंसान की फितरत में, और ये कि तुम हर सजदे के वक्त अपना रुख सीधा रखा करो और अल्लाह ताला की इबादत इस तौर पर करो कि इस इबादत को खालिस अल्लाह ही के वास्ते रखो। तुमको अल्लाह ने जिस तरह शुरू में पैदा किया था, इसी तरह तुम दोबारा पैदा हो गए। बास लोगों को अल्लाह ने हिदायत दी और बास पर गुमराही साबित हो गई। दुआ कीजिए अल्लाह में हिदायत पर रखे। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को दोस्त बना लिया है और ख्याल रखते हैं कि वो राह रास्त पर हैं। या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ए औलादे आदम, तुम मस्जिद की हर हाजिरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो। नेकेड तवाफ करते थे, कहते थे इन कपड़ों में गुनाह करते हैं, इनको उतार के दाके काबा में तवाफ करेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं इनसे बोलो कि लिबास पहना करो और खूब खाओ और पियो और हद से मत निकलो, बेशक अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के पैदा किए हुए असबाबे जीनत को, जिनको इसने अपने बंदों के वास्ते बनाया है, और खाने पीने की हलाल चीज़ों को किस शख्स ने हराम किया है? नोट कीजिए, सवाल है। अल्लाह ऐसे तमाम लोगों को सवाल करते हैं, मन हर्रम ज़ीनतुल्लाहिल्लतीअख़रजलिबादीही, जीनत को कि यहाँ लिबास के नाते से लें तो वो टेक्स्ट है जिसमें आए थे, तो तुम्हें किसने कहा कि कपड़े उतार के तुम इबादत करो? याद रखिए दुनिया में दो रास्ते हैं जिससे न्यूडिटी फैली, एक रिलीजन मजहब। अब हिंदू दासियों को देखिए, ना होने के बराबर कपड़े होते हैं उनके जिस्मों पर, और इसी तरह बाकी कई मजाहब में भी है। इसी तरह दूसरा कल्चर, कल्चर पे लोग बेलिबास हुए होते होते कल्चरल शोज और क्या कुछ नाम आ गए, और दूसरी तरफ ये थे। दूसरा इसका कॉन्टेक्स क्या है? जीनत को जीनत पे लीजिए, ये है वही बात जो पिछले पारे में मजहबी तबके पे एक तनकीद की सूरत में आई थी कि तुमने अल्लाह की हलाल चीज़ों को हराम क्यों कर दिया? अपने फतवों के नाम पे, अपने तकवे के नाम पे, सादगी के नाम पे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन हर्रम ज़ीनतुल्लाहिल्लती अखरज अलिबादिही, ये है दीन का मिजाज, ये है अदल। सूरत अल अराफ का एक बुनियादी थीम भी सिदकम व अदला है। इस पारे में भी यही बात है, हक और बातिल की इस जंग में आपका मेरा रवैया बैलेंस हो, मिडल में रहिए ना, बहुत ऐसी चीज़ों में आ जाइए कि दीन बोझल बन जाए, और ना बिल्कुल दीन को अलग कर दें, जितना नेचुरल रहेंगे उतना दीन को एंजॉय करेंगे। और दीनदार की ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होती है, ये तो वो जाने जिनको ये लगी, बाकी लोग तो निरी बेकार की ज़िंदगी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ मना किया भेजा ऐसी चीज़ों में जाने के जिससे दीन खाम खा आपके ऊपर बोझल बन जाए। क्यों भाई? अल्लाह ने किसके लिए ये सब पैदा किया? अब आप कहते हैं मैं स्ट्रॉबेरी नहीं खाऊंगी क्योंकि ये महंगी बहुत है, ये बड़ा लग्जरियस फल है, तो स्ट्रॉबेरी अल्लाह ने क्यों पैदा की? आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के पैदा किए हुए असबाब जीनत को, जिनको इसने अपने बंदों के वास्ते बनाया, और खाने पीने की हलाल चीज़ों को किस शख्स ने हराम किया है? आप कह दीजिए ये अशिया इस तौर पर क्यामत के दिन रोज़ खालिस होंगी, अहले ईमान के लिए, दुनियावी जिंदगी में मोमिनों के लिए भी हैं। हम इसी तरह तमाम आयात को समझदारों के वास्ते साफ साफ बयान करते हैं। आप फरमा दीजिए, अब यहाँ से लिस्ट है, कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल-फवाहिश, यानी अल्लाह ने आम चीज़ों को हराम नहीं किया बल्कि हराम किया। आप फरमा दीजिए कि अलबत्ता मेरे रब ने हराम किया है इन तमाम फुखश बातों को जो ऐलानिया हैं और जो पोशीदा हैं, इस पे आप 1, 2, 3 लिख सकते हैं, और हर गुनाह की बात को, और नाहक किसी पर जुल्म करने को, और इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज को शरीक ठहराओ जिसकी अल्लाह ताला ने कोई सनद नाजिल नहीं की, और इस बात को कि तुम लोग अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात ना लगाओ जिसको तुम जानते नहीं, और हर गिरोह के लिए एक मियाद मुअय्यन है, बस जिस वक्त इनकी मियादे मुअय्यन आ जाएगी इस वक्त एक साथ ना पीछे हट सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे, यानी हर बंदा इस दुनिया में एक अपॉइंटेड टाइम के लिए आए। अब ये सारा कुछ बताने के बाद अल्लाह ताला दोबारा औलादे आदम को दुश्मन से आगाह करते हैं, क्या, या बनी आदम, ए औलादे आदम, अगर तुम्हारे पास पैगंबर आए जो तुम ही में से हो और जो मेरे अहकाम तुमसे बयान करें, तो जो शख्स तकवा इख्तियार करे और दुरुस्ती करे, बस इन लोगों पर ना कुछ अंदेशा होगा और ना वो गमगीन होंगे, और जो लोग हमारे नए काम को जुटलाएं और इनसे तकबर करें वो लोग दोजख वाले होंगे, वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। बस इस शख्स से ज्यादा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे या इसकी आयतों को झूठा बताए? इन लोगों के नसीब का जो कुछ किताब से है वो इनको मिल जाएगा, यहाँ तक कि जब इनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनकी जान कब्ज करने के लिए आएंगे तो कहेंगे। इस पे गौर कीजिएगा और दुआ करें कि जो लोग अनजाने में शिर्क का शिकार हैं अल्लाह ताला उनको इससे निजात दे दे। क्या कहेंगे? वो कहाँ गए जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते थे? वो कहेंगे हमसे सब गायब हो गए और अपने काफिर होने का इकरार करेंगे। कैसी हसरत होगी उस वक्त। तो आज आपको मुझे दुनिया में ऐसे लोगों तक पहुँचना है जो किसी भी वजह से शिर्क का शिकार है। आइए अमल के नुक्ते लेते हैं और तदब्बुर करते हैं। पहली तो बात है कि अपने जानते बूझते अनजाने इकराह के जोर जबरदस्ती से किए हुए सब तरह के गुनाहों से तौबा और इस्तग़फ़ार करनी है। और आदम अलैहिस्सलाम की ये दुआ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, इसको शऊर के साथ एटलीस्ट दिन में 3 दफ़ा पढ़िए और सोचें कि आज कौन कौन से गुनाह किए हैं। सुबह उठते ही पढ़ लीजिए, मिड ऑफ द डे पढ़िए, और रात सोने से पहले, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अपने गुनाहों का एहसास देंगे। फर्ज नमाज से मस्जिद में अदा करनी है और नमाज के लिए अच्छी तरह तैयार होकर जाना है। आपको पता है कि लहसुन और प्याज की बू के साथ मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, पसीने के कपड़ों के साथ, सिगरेट की बू है, हमारे अबाए अगर बाहर जलने की वजह से अगर उसमें स्मेल आ रही है, तो इन सब चीज़ों को हटाकर साफ सुथरे होकर इधर भी आते हैं साफ सुथरे। इसका ये नहीं मतलब कि आप सज धज के आए, मतलब ये कि इंसान अपने आप को हाइजीनिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करे ताकि इबादत में लज्जत पैदा हो। रात को तरावी से पहले शावर लें, साफ अबाया पहने, साफ स्कार्फ लीजिए, तो इनशाला उससे आपकी रूहानियत बढ़ जाएगी। और कई लोग स्कार्फ पहनने लगते हैं तो कंघी नहीं करते, कहते हैं स्कार्फ के फायदों में ये कि कंघी नहीं करनी पड़ती। मुझे समझ नहीं आता उनका ब्लड कैसे चलता है दिमाग में। तो कभी कोई काम दूसरों की बजाय अपने लिए भी कर लिया करें। फिर तौबा करने वाले को अल्लाह की रहमत और मगफरत का सहारा होता है, इसी तरह वो फिर आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों से निकल जाता है। कुरान पाक से रहनुमाई, फजूल खर्ची से बचना है क्योंकि फजूल खर्च शैतान के भाई होते हैं। अल्लाह के हराम को हलाल या हलाल को हराम करना किसी के लिए जायज़ नहीं। उम्मत के अक्सर अफराद गुनाह में मुब्तला हो जाएं तो फिर उम्मत हलाक हो जाती है, यानी अक्सरियत की फिर वो हालत अगर हो तो। गौर व फिक्र की चंद बातें, गुनाह का इतराफ और इस पर माफी मांग लेना अफसल अमल है। क्या होता है? आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग, क्या गया मेरा, कोई मेरे जिस्म का हिस्सा उतरा? बच्चों को भी सिखाए ढीठ बन नहीं आना चाहिए। आई वॉज रॉन्ग, इट्स सॉरी, आई एम रॉन्ग, मैं पूरी की पूरी रॉन्ग हूँ, कह के तो देखिए कितना दिल खुलता है। तकवा का लिबास ही बेहतर है क्योंकि ये दिल और रूह की जीनत और खूबसूरती है। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, जिस्म और दिल दोनों की इस्लाह का नुस्खा है। साफ खाइए, मुनासिब खाइए, पेट में जगह रख कर खाइए। मदीना में कहते हैं कोई हकीम ही नहीं था, एक आ गया कुछ दिन रहा, कोई दुकान पे आया ही नहीं, वापस गया, कहा तुम्हें मेरी जरूरत नहीं क्योंकि तुम अपने रसूल के तरीकों पे अमल करते हो। हम क्या कहते हैं अपने बच्चों को, माशाल्लाह पेट भर के खाना, ये पेट भर के खाना चाहिए। उंगलियां डाल डाल के देखते हैं कि यहाँ तक खाना आ गया, किसी और को ना देना। इस पे कम से कम 20-25 आदाब खाने खिलाने के तफसीर की क्लास में मैं लिखाया करती हूँ, उसी में से आप अपने लिए जो मर्जी समझ लें। खाने पीने की आदतों को रसूलुल्लाह के तरीके पे लाइए। अल्लाह के नबी बाहसियत एक बैलेंस्ड इंसान के, अल्लाह ताला जाहरी और बातनी खूबसूरती अपनाने को पसंद करता है, क्योंकि इन अल्लाह जमील जो हिब्बुल जमाल।